इसके बाद लंबी लिस्ट है। अब हमारे लिए कुछ गाइडलाइन है किस बात की, किन औरतों से निकाह नहीं हो सकता। गौर से सुनिए, मैं पांचवा पारा इसके साथ ही शुरू कर दूंगी क्योंकि ना सिर्फ टॉपिक एक है बल्कि बात एक है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खवातुकुम, हराम की गई तुम पर। हराम से आगे लिख लीजिए क्या, उन पर, उनसे निकाह करना हराम है। मुहर्रिमात कहते हैं ऐसी औरतों को। समझ लीजिए कि इस्लाम ने कुछ औरतों से निकाह हराम क्यों किया, उसकी वजह क्या है, सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर कुछ रिश्तों से निकाह हराम ना होता तो घरों के बाहर जो गंदगी है घरों के अंदर कितनी ज्यादा होती। भाई बहन, माँ बेटा, फूफो भतीजा, भांजा खाला, इन रिश्तों में निकाह को हराम करने की वजह यह कि घर का माहौल प्योर रहे, हर वक्त लव रोमांस सेक्स का ही दिमाग पे तसल्लुत ना, और आप अपने घर में मुतमईन रहे। पता चले आप इधर आए, घर में भाई बहन और आपकी जान पे बनी हुई है, बाप बेटी घर में। और याद रखिए हदीस में आता है क़यामत के करीब मुहर्रिमात से ज़िना होंगे, क्योंकि जस्ट फॉर चेंज बाहर का टेस्ट तो ले चुके, अब और क्या लेंगे, बाहर तो जाना पड़ता है, घर में तो मौजूद है। और इस पे कई जालिमों ने इतना गंद घोला, आगे कहीं मौका हुआ तो सुना दूंगी। वो कहते इस्लाम कितना बेवकूफ मजहब है, घर में एक औरत जो बड़ी आपके साथ रही, जिसके मिजाज को आपको जानते हैं, जो आपकी बहन है, उसको छोड़ के आपको एक गैर औरत से शादी करने की दावत देता है, जिसका आपको ना मिजाज पता। तो वो कहते हैं बेस्ट जोड़ जाए वो भाई और बहन का। ये जुमला, ये मैंने तफसीर में भी लंदन में भी कोट कराया था रेफरेंस के साथ, अगर किसी को टू मच लगे तो अभी छोड़ दे। लेकिन आज ऐसे ऐसे लिखने वाले आगे लिखारी और राइटर्स जो इस्लाम पे तनकीद करते हैं, कहते हैं बेस्ट शादी भाई और बहन की, तो ऑफकोर्स यही तो करेंगे। लकद खलकनल इंसान अफी अहसनी तकवीम थुम्मा रददना असफला साफिलीन। याद रखिए जब इंसान इंसानियत से गिरता है ना तो जानवर भी नहीं रहता, ये काम तो जानवर भी नहीं करते, उनको भी पता होता है कौन मेरा रिश्तेदार कैसे है। तो लिहाजा अल्लाह सुबहाना ताला ने कुछ रिश्तों को हराम कर दिया ताकि घरों में सुकून हो, प्योरिटी हो। कभी कोई सोच भी नहीं सकता अपनी माँ से शादी करे, कोई सोच नहीं सकता बहन से करे, तो अल्लाह ताला कहते हैं किन किन से नहीं करना। तुम पर हराम की गई तुम्हारी माएँ, बेटियाँ, बहनें, भूभियाँ, खालाएँ। पहले तो इसको देखिए प्यार कितना आता है इन रिश्तों पर जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कर दिया। मैंने देखे कुरान पढ़ने के बाद अपनी रिश्तों से बड़ा प्यार हो जाता है। इसी तरह फरमाए वा बनाते लखी व बनाते लुखती व उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम, तुम्हारी भतीजियां और भांजियां यानी नीस और जो भी भाइयों बहनों की बेटियां होती हैं उनकी बात कर दी। और तुम्हारी वो माएँ जिनको तुमने दूध पिलाया यानी नर्सिंग मदर्स, पहले दौर में ये आम होता था, औरतें अपने दूध के साथ साथ दूसरी औरतों का भी दूध पिलवाती थी। फिर इसी तरह तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की लड़कियां जिन्होंने तुम्हारी गोदों में परवरिश पाई हो, इन बीवियों की लड़कियां जिनसे तुम्हारा ताल्लुक शौहर और बीवी वाला हो चुका हो, वरना अगर सिर्फ निकाह हुआ हो और ताल्लुक के शौहर बीवी ना हो तो इन्हें छोड़कर इनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में तुम पर कोई पकड़ नहीं। और तुम्हारे इन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी सुल्ब से हो यानी बहू डॉटर इन लॉ कह सकते हैं, और ये भी तुम पर हराम किया गया कि एक निकाह में दो बहनों को जमा करो, मगर जो कुछ हो गया सो हो गया, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब यहां तक पारे का एंड खत्म हुआ, लेकिन मैं इसको चंद लफ्जों में दोहरा दूं। तीन कैटेगराइज में आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं किन औरतों से हराम है रिश्ता। एक तो सगे रिश्ते जिसमें हमने देख लिया माँ बहन बेटी पुपी खाला, दूसरी सूरत कौन सी है, रजात, जिनसे दूध पिलवाया हो। आज ये आम नहीं है लेकिन अरब माशरे में आम था, और ये बहुत हेल्दी वे ऑफ तरबियत और बच्चों के रेस करने का था कि सेहतमंद औरतों से दूध पिलवाते थे। और इससे बाज़बा क्या होता था, मसलन आप में से किसी की औलाद नहीं है, अब आप कहते हैं हाय बूढ़े हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा वो होगा, छोड़ दीजिए जिनकी औलाद है उनको भी नहीं पता उनके साथ क्या होगा। लेकिन मैं हम सब बहनों को जिनको अल्लाह ने औलाद की दौलत नहीं दी अगर, और वो चाहती हैं कि किसी को अडॉप्ट करें या उनकी को बुढ़ापे में टेक केयर करें, आप क्या करें, किसी का बच्चा लें और अपनी बहन जो आपकी अपनी बहन है, या आप उसको अपने किसी ऐसे रिश्ते से दूध पिलवा लें कि आप उस बच्चे की रजाई खाला बन जाए, रजाई पुप्पो बन जाए। अब जब रजाई खाला या पुप्पो बन गई वो बच्चा आपका महरम है, आप उसको अपने घर रख लें, वो आपका ऐसे ही बच्चा है जैसे कि दूसरा बच्चा है, ठीक है। तो अडॉप्शन का बेस्ट वे क्या है कि किसी खून के रिश्ते से या उसको दूध पिलवाकर या वैसे ब्लड रिलेशन है जो उनको रख लें, तो आपकी टेक केयर करेंगे। तो ये इस्लाम के सारे आप कह लीजिए कि मीन्स हैं जिन तरीकों से हम कमियों को पूरा कर सकते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद नहीं थी और उनको कोई इसकी तड़प भी नहीं इस तरह की दिखती, लेकिन 18 साल की उम्र में बेवा भी हो गई, 57 ईयर्स के तक तकरीबन वो जिंदा रही आपके बाद, तो क्या करती थी, किसी और के बच्चे को लाती, अपनी बहन का दूध पिलवा लेती हजरत असमा से, तो उनकी रजाई खाला बन जाती। इस्लाम ने हर चीज का कॉम्पनसेशन दिया। ये जो हमने अपने ऊपर महरूमियां रखी हुई, आए बेटा कोई नहीं, बेटी कोई नहीं, आए क्या करें, क्या हो जाएगा, ये हमारा ख्याल है। आप इस्लाम के तरीकों पर चलें, आपको अल्लाह ताला सारे रिश्ते वापस दे देगा। फिर इसी तरह से आगे फरमाया कि तुम पर एक निकाह में दो बहनों को, यानी एक मर्द एक ही वक्त में दो बहनों को रख नहीं सकता। हम तो वैसे ही दूसरी शादी के खिलाफ है, हमें इस हुक्म से क्या लगे। लेकिन आप देखिए कि यहाँ अल्लाह हराम कह रहा है। मैं जुमला बोलूंगी, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन हमारे कल्चर में कहते हैं साली आधे घर वाली। क्या ये एक उम्मत वसत को सूट करता है जुमला? कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? इस्लाम पाबंदी लगा रहा है। और याद रखिए, जितनी खराबियां यहां आती हैं शायद कम आती होंगी। और होती भी कब है? जब एक बहन बच्चा पैदा कर रही है और दूसरी बहन घर में आकर टेक केयर के लिए रही, पता चला वहां गलत तरीके शुरू हो गए। हमेशा आग और पानी को अलग रखें। इस्लाम नहीं चाहता कि हमारे घरों को आग लगे। फिर इसी तरह से आप देखिए, अल्लाह ताला ने फूफी और भांजी और भतीजी, खाला और फूफी के साथ भी एक रिश्ते में नहीं रख सकते, उसका जिक्र हमें हदीस से मिलता है। अब ये सारी लिस्ट तो पूरी हो गई, क्या कंप्लीट हो गई औरतों की लिस्ट जिनसे निकाह नहीं हो सकता? नहीं, एक औरत रह गई है, वो कौन है आप में से कोई गैस करे? यानी फूफी, मामू, खाला सब आ गए, जो भी हमने पढ़ लिया, एक रिश्ता भी बाकी है, वो कौन सा है? वो तो गुजर गया, आ गया सौतेली माँ भी आ गई जी, चच्ची नहीं है महरम। अभी आप समझ जाएंगे जब मैं अगली बातें करूंगी जी। शाबाश, हर शादीशुदा औरत, हर औरत जो इस वक्त किसी मर्द के निकाह में है, वो दुनिया के हर मर्द पे हराम है। तो देर इज नो अफेयर आफ्टर मैरिज, जिसको पहले तो लोग कहते थे कि कुंवारों के अफेयर्स हैं, अब शादीशुदाओं के अफेयर हैं। यही है वल मुहसनात मिनन निसा, इस हुर्मत वाले रिश्तों में एक और क्या है और वो कौन है? और वो औरतें भी तुम पर हराम की गई जो किसी दूसरे के निकाह में हो। तो आप अब सोचिए, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ मुहर्रमात वही होती हैं जिनसे शादी नहीं हो सकती, तो फिर दिस एंड दैट। तो यहां तो आपको वो बात समझ आ गई कि हर शादीशुदा औरत पर्दा छोड़ दे, क्योंकि निकाह तो किसी से कर नहीं सकती। इस पे बहुत डिटेल है लेकिन इस वक्त मौका नहीं। लेकिन यहां नोट कीजिएगा लस मोहसिना, एक शादीशुदा औरत जो होती है ना, वो किला बंद है। हसन अरबी में किले को कहते हैं, फोर्ट्रेस, और इसी तरह से सिटाडेल भी बोलते हैं गालिबन। किले में आती है ना जैसे कोई चीज, तो सिक्योर होती है। शादी के बाद एक औरत किला बंद होती है। आज के दौर में एक आम बात देखी गई है कि लोग शादी के नाम से उलझने लगे, और फिर जब उम्र गुजर जाती है फिर होती नहीं है। आप सब जो बच्चियों की माएं हैं, अपने लिए नियत कर लें, दुआ भी करें, पहले अपनी बच्चियों को उस तरह से रेज करें, और उसके बाद जो पहला रिश्ता शरीफ खानदानी शख्स का मिले, बिस्मिल्लाह कर दें। वो खूब से खूब तर की तलाश में दिन ब दिन, हमारा स्टैंडर्ड तो फिर कहते हैं चलो अब कम पे भी राजी हैं, लेकिन हम अपनी जात से खो चुके होते हैं। फिर लोगों की डिमांड्स बहुत सारी होती हैं। तो जिस सोसाइटी में अनमैरिड लोग ज्यादा होंगे या शादी के रास्ते में इतनी रुकावटें होंगी, वो दूसरे काम कब करेगी? इस्लाम चाहते भूख लगी ना, जल्दी से कुछ खा लो ताकि सर में दर्द ना हो, वॉशरूम में जाने की जरूरत पड़ी जाओ चले जाओ ताकि रिलैक्स हो जाओ, फिर तुम नमाज पढ़ सको। इसी तरह इस्लाम का मशवरा क्या है कि जब बच्चे बच्चियां प्यूबर्टी के एज पे आ जाते हैं, जब उनमें ये इमोशंस शुरू हो गए, और थोड़ा सा उसमें कुछ दो चार साल ऐड कर लीजिए कि जब वो लायबिलिटीज को ले सकते हैं, शादी कर दो। आज आप देखिए जिस दुनिया के अंदर हम रहते हैं, वहां 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं अलाउड, लीगल नहीं है। तो ताल्लुकात और बॉय फ्रेंडशिप गर्ल फ्रेंडशिप हाई स्कूलों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, और इससे भी नीचे अब तो बात चली गई, जहां लड़का लड़की हर वक्त साथ, चारों तरफ गंदगी, एड्स गंदे, बाहर गंद, अंदर गंद, और आप कहते हैं कि शादी नहीं कर सकते। तो ये वही बात है कि इसी भूखे को आप खूब बिरयानी कौरमे दिखाएं और को खा नहीं सकते। इसलिए बच्चों की शादियों में देर नहीं करनी। इसके लिए अल्लाह ताला का यही फैसला है कि ऐसी औरतें फिर सिक्योर हो जाएंगी। फिर उसके बाद फरमाया, अलबत्त ऐसी औरतें से एग्जेम्प्ट है जो जंग में तुम्हारे हाथ आए। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम की गई। यदि लौंडी या गुलाम, अब कुछ लोग हो सकता है इस पर भी बात करें तो ये नॉन इश्यू है। आज लौंडी और गुलाम बसते ही नहीं है, आज उस पर बात करना बिल्कुल बेकार है। लेकिन याद रखे कि ये इस्लाम का इशू नहीं था, ये आज के दौर में इशू बन गया, लिहाजा अल्लाह ताला ने ये बात करके बता दिया। अब यहां अगर आप आयत देख रहे हैं पांचवें पारे की पहली जीम, जहां लिखा है ना वहां एक छोटी सी लाइन डाल लें, इससे पीछे पीछे उन औरतों की लिस्ट थी जिनसे निकाह नहीं कर सकते। अब आगे क्या है इस आयत के अगले हिस्से में, किन से कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, यानी मैं इस पहले रुकू को पांचवे पारे के कहती हूँ, इस्लाम में निकाह की फाउंडेशंस, चार बुनियादी चीजें आप इस एक रुकू के अंदर से निकाल सकते हैं कि निकाह की क्या शरायत है। वही बात हम देखने लगे हैं, वो हिल लकुम मा वरा ज़ालिकुम, और हलाल है इनके लिए व बाकी सारी औरतें, यानी ये रिश्ते सारे खत्म हो जाएं और शादीशुदा औरतें जो पहले से किसी के निकाह में, इसके अलावा हर औरत अवेलेबल है, शादी कर लोगे। कब कैसे? अंत अफ्तगु बि अमवालिकुम, पहली शर्त क्या है? अपने मालों के जरिए हासिल करो हक में। नंबर वन पे आप हक में लिखना चाहे लिख लें, यानी इस्लाम में निकाह की पहली शर्त साथ क्या आ गई इधर, हक महर है, बशर्ते के हिसारे निकाह में महफूज करो, ये दूसरी शर्त है। यानी टाइम बाउंड शादी नहीं हो सकती, पेपर मैरिज नहीं हो सकती, एक साल के लिए शादी नहीं कर सकते, चूंकि इस मुल्क में 3 माह का वीजा है, कोई मेरी 3 माह के लिए शादी करा दे, जाते हुए तलाक दे दूंगा, ये नहीं हो सकती। इस्लाम में शादी का मकसद सिक्योरिटी होता है, ये हलाला जो करवाते हैं ये इसीलिए नाजायज है, क्योंकि उसमें तो इस शर्त के साथ शादी की जाती है कि आपको तलाक देनी पड़ेगी, तो आप कह लीजिए कि घर तोड़ने के लिए नहीं, घर बसाने के लिए शादी होगी। फिर इसके बाद ना ये कि आजाद शहवत रानी करने लगो, शोहर बीवी का ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक ना रहे बल्कि जिम्मेदारियों का ताल्लुक हो, फिर जो इस दवाजी जिंदगी का लुत्फ तुम इनसे उठाओ, इसके बदले में इनके मेहर बतौर फर्ज के अदा करो। अलबत्ता मेहर की करारदार हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, अल्लाह ताला अलीम और दाना है। अब आपके पास सवाल है कि ये शरायत तो हो गई जिसमें वली भी आ गए, अगर आप इधर हाईलाइट करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस्लाम की जो शरायत है, मैं ऐसी चंद बोल देती हूँ, हक महर लाजिम है, दें या ना दें उसका जिक्र लाजिम है, बाद में दें, वक्त पे दें, कैश की सूरत में दें, किसी फॉर्म में दें, जेवर में दें, इट्स फाइन, ये चलेगा। दूसरी बात है कि इजाबो कबूल, मुंह से बुलवाना पड़ता है कि क्या आप इतने हक महर पे अपनी बेटी या फलां को देते हैं। हम कहते हैं ना लड़की लड़के का निकाह होता है, अगर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्शियस करने के लिए बता दूं कि लड़की लड़के के बीच में निकाह की गिरा नहीं लगती, लड़की के बाप और लड़के के बीच में लगती है, क्योंकि हदीस में आता है कि ला निकाह इल्ला बी वलीयत, इस्लाम में कोर्ट मैरिज की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? कि अगली आयत का हिस्सा पढ़ लेते हैं फिर उस पर मजीद बात समझ आ जाएगी कि जब किसी को कोई आजाद औरत नहीं मिल रही निकाह के लिए तो क्या करे। वमल्लम यस्तती मिनकुम तौलन, और तुम में से जो शख्स इतनी कुदरत ही नहीं रखता कि खानदानी मुसलमान औरतों यानी मुहसनात से निकाह कर सके, तो इसको चाहिए कि तुम्हारी लौंडियों में से किसी की लौंडी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हो और मोमिना हो। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है, तुम सब एक ही गिरोह के लोग हो, बस इनके सरपरस्तों की इजाजत से इनके साथ निकाह कर लो और मारूफ तरीके से इनके हक मेहर अदा कर दो ताकि वो निकाह के हिसार में महफूज होकर रहें, आजाद शहवत रानी ना करती फिरें और ना चोरी छुपे आशनाइयां करें। फिर जब हिसारे निकाह में महफूज हो जाने के बाद हो जाएं और इसके बाद किसी बदचलनी की मुर्तकिब हों तो इन पर इस सजा की निस्बत आधी सजा है जो खानदानी औरतों यानी मुहसनात पर मुकर्रर है। ये सहूलत तुम में से इन लोगों के लिए पैदा की गई जिनकी शादी न करने से बंदे तकवा के टूट जाने का अंदेशा हो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह ताला बख्शने और रहम वाला है। यहाँ पे किस्म का ये टॉपिक वाइंड अप होता है क्योंकि मौजू बहुत अहम है और बहुत ज्यादा हमारे लिए इसमें गाइडलाइन है। बींग उम्मत वसत, तो मैं इस्लाम का मिजाज थोड़ा सा आपके सामने खोलना चाहती हूँ। पहली बात है, और ये सब कुछ हमने इन आयतों में पढ़ा है लेकिन इतनी फासली अभी आप उसको कॉप नहीं कर पाएंगे, आप चाहें तो इन आयतों की डिटेल तफसीर सुन के बाद में अपने नोट्स को पूरा कर लें। लेकिन इस्लाम क्या चाहता है? पहली बात है कि शादी से पहले लड़के और लड़की की रजामंदी लाजिम है। इस्लाम फोर्स मैरिज को मानता नहीं। अगर कोई बाप जबरदस्ती बेटी का निकाह कर दे और बेटी नहीं चाह रही तो वो निकाह हो तो जाएगा लेकिन लड़की को इख्तियार है कि वो उसको तुड़वा सके यानी डाइवोर्स ले ले, गुना नहीं होगा उसको। लड़की बाप से पूछे बगैर निकाह कर ले, होगा ही नहीं, फर्क समझ गए? बेटी बाप से या वली से बगैर इजाजत के निकाह कर लेती है खुद या किसी और को वली बना लेती है, अच्छा अब्बू नहीं मान रहे तो मामू को ले जाते हैं, नहीं हो सकता। बाप नहीं मान रहा तो भाई को साथ लगाए, नहीं, करीब के वली के बगैर नहीं। क्यों ये इतनी शर्त है? मैं आपसे पूछती हूँ, कोई चीज आपको अनअटेंडेड कहीं पड़ी हुई मिले आप उसकी ज्यादा वैल्यू लेंगे, या कोई चीज आपको बड़े प्यार से सिक्योरली कोई ला के दे के ये मैं आपको दे रहा हूं इसकी कदर कीजिएगा? जो लड़कियां खुद अपने रिश्ते जोड़ लेती हैं फिर तोड़ती हैं तो उस वक्त भी कोई नहीं होता, पहले दौर में लोग क्या कहते थे, भरे बुरे घर में लड़की दो, कोई मसला होगा तो लोग बचा लेंगे। आप सब में से मुझे यकीन है कि अक्सर ने अपनी शादी के आगाज में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में आंख खोली। आप जिस घर में शादी होकर गई, वहां देवर जेठ सास नन सब थे। कभी खुदा ना खासा शौहर बीवी के मिजाज में कोई गर्मी सर्दी हुई, सास आगे आ जाती, खबरदार इसको कुछ ना कहना। ससुर तो हमेशा बहू की हिमायत करते हैं, इसको कुछ ना कहना। मियाँ चुप हो जाते हैं। अब ये इतने इसके हम ख्याल है, मैं क्या बोलूं। इसके बरक्स आप आ जाइए बर्गर फैमिली, या आप वन यूनिट फैमिली या सिंगल फैमिली, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं कौन मनाए। इसीलिए तो फिर झटपट में मामले बिगड़ जाते हैं। लोगों के बीच में रहेंगे ना, तो अगर लोगों से कुछ तकलीफें भी आएंगी तो खैर भी होगी। लिहाजा खुद से शादियां कर देना इस्लाम इसको पसंद नहीं करता, कदर नहीं होती। वो लड़के जो लड़कियों को ले भी जाते हैं, बाद में कहते हैं तो वही है ना जो आ गई थी। और इस पे अक्सर मैं कहानी वो सुनाती हूँ कि एक लड़का जो एक लड़की से इन्वॉल्व था, बिलाखिर कहने लगा तुमसे शादी तब करूंगा जब तुम अपने बाप का सर काट के मुझे पेश करोगी। खैर उसने किसी से मदद ली और कहा मेरे बाप को कत्ल कर, उसका सर ला के अपने महबूब के पास दे दिया, लो जी अब कर लो। कहने लगा अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा, जिस बाप ने तुम्हें इतने साल पाला पोसा, तुमने उसका सर काट दिया, तुम कल मेरे साथ क्या करोगे, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। इट्स ट्रू, बस दफा किसी एक लड़के की मोहब्बत में लड़कियों की आंखों पे वो पट्टी पड़ जाती है कि वो झूलों में झुलाया जाना और लोरियां देना और कंधों पे उठाना और बाबुल के गीत और माँ की मोहब्बत सब भूल जाती हैं। मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। आई इधर जाती हैं, उधर चंद महीने के बाद फिर रोती हुई वापस आती हैं, सॉरी माफ कर दें हम जल्दी में थे। ये इस्लाम ने एक इज्जत दी औरत को। औरत बड़ी प्यारी चीज है, बेटियां तो इतनी मीठी होती हैं, जिनके साथ इतने लाड जितने प्यार देखे वो लड़की खुद उठ के चल पड़े, बाप को अच्छा लगेगा। और ये आज इतना बिग इश्यू बन गया, इसीलिए फिर आज पेरेंट्स भी कॉम्प्रोमाइजिंग होंगे। मैं अब सब पेरेंट्स को भी ये कहूंगी, डोंट बी कॉम्प्रोमाइजिंग। ऐसी शादियां होती देखी, लड़का नॉन मुस्लिम है लड़की मुस्लिम है, और माँ बाप क्या करे मजबूर है, ना हम ना करेंगे तो ये खुद करेंगे, तो भी शादी की क्या जरूरत है, फिर ऐसे ही जाने दे। ऐसी शादियां भी देखेंगी, प्रेग्नेंट लड़कियों की शादियां हो रही हैं, क्या करें मजबूरियों में, ये गंद जिस माशरे में होगा वहां कभी उम्मत वसत पनपे की नहीं। ये उनको सूट करता है जिनका कोई दीन मजहब नहीं है, मुसलमान प्योर होते हैं, उनकी सोचे प्योर होती हैं, वो कभी तब्दीली ऐसा नहीं चाहते। अब शादी करनी है तो कैसे करें, लड़की देखी अच्छी लगी, आपको अपने बेटे के लिए सूटेबल लगती है, सब कुछ देख लिया अच्छी है, घर भी अच्छा है, शरीफ है, समझदार लगती है, माँ भी अच्छी है, सब दिल बन गया, ठुक गया, बैलेंस गया। अब आप अपने बेटे को बुलाइए, घर वालों से इजाजत लीजिए कि देखिए ऐसे शादी नहीं होगी, मेरा बेटा आपकी बेटी को देखेगा, देख सकता है, बात कर सकता है, व्यूज डिस्कशन कर सकते हैं आपस में, लेकिन तन्हाई नहीं होगी। आप साथ बैठे, कोई बैठे, उसका बैठे, थोड़ी देर में बात करके थोड़ा मौका ले लें, जितना भी है करके देख लें। ये नहीं हो सकता कि शादी से पहले ही कोई इतनी ज्यादा डेटिंग्स और लिविंग टुगेदर है कि हम चेक कर रहे हैं, और जब जितना क्लोज होता है बंदा शादी से पहले, मंगनी के बाद उतनी मंगनियां ज्यादा टूटी हैं। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है लोगों की, हम काउंसलिंग भी करते हैं, एक हमारा इशू है दुख सुख, तो उसके वजह से कई चीजें सामने आती हैं। सिर्फ फ्री फीस भी लेला लोगों को मशवरा दिया जाता है कि क्या इशू है। बिलीव मी, जहां शादी से पहले मंगेतर या फियोंसी के साथ घंटों बातें करना, होटलिंग करना, खाने खाना अलाउ किया, उधर शादी की नौबत ही नहीं आई। वो कहते ने मैंने इसको बहुत देख लिया, आई डोंट लाइक हिम, खत्म भाई। वो मंगेतर है, ही इज फियोंसी। फियोंसी और हस्बैंड में जमीन आसमान का फर्क है, जैसे एक लवर या बॉयफ्रेंड में और मंगेतर में फर्क होता है। तो भोले भा शादी हो जाए तो अच्छा, रिश्ता तय नहीं हुआ आप दिखा दीजिए, बात कर लें, इट्स ओके, इनका हक है। इसी तरह आप अपनी बेटी को भी दिखाएं, पूछें, कोई जबर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, इधर अल्लाह ने बात कर दी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब एक सवाल आपके जहनों में होगा जो मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी कि अच्छा फिर अपनी पसंद की शादी, लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया तो लड़के को लड़की आ गई है, तो अब क्या करें, उस वक्त भी विलन बन जाए, ये शादी नहीं हो सकती, तुमने गैरत कर दी, बाप की लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो देखिए जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस जगह हमने इतनी आजादियां दी, ये आज क्यों आपकी गैरत जागी जिस दिन लड़का लड़की शादी की इजाजत मांग रहे हैं। पहले आप कब कहाँ थे, आपकी बच्चियां रातों को आधी रात तक बाहर हैं, वो शाम तक बाहर है, वो इतने घंटों जब बाहर है ना चाहते हुए भी एसोसिएशन हो जाती है, नेक लोगों की भी हो जाती है, फितरी बात है, जब भूख लगती है तो बंदे की नजरें उठती हैं। आपने अपने बच्चों को इतना बड़ा क्यों किया कि वो इधर उधर देखें, जब छोटी उम्र में रिश्ते तय होते थे, होते हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके अभी अकल आने से पहले शादी हो चुकी होती है। सोचा ही कुछ नहीं था, जैसा मियाँ मिला गुजारा हो गया, सोचा ही नहीं था कैसी बीवी मिलेगी, वो गलतियां करते हैं। बाद दफा आपने देखा होगा शादी के बाद बापों के से डांट खाते लड़कियां अपने मियाओं को देखती हैं, हर हफ्ते वो पैसे मांगते हैं, अबू पैसे दे दें, लड़की सोचती अच्छा ये मेरा हस्बैंड जो अभी मेरी शादी की अपने अब्बू से पैसे लेता है, बस वो अब्बू की कदर उस लड़की के भी जेब में हो गई। और जो बहू आई पहले ही अपने मियाँ के घर में और उसने कोठी बंगला, वो सास ससुर को क्यों पूछेगी? फिर वो कहती लो हम इंडिपेंडेंट है। जहां किसी को इनडिपेंडेंट, आप लिख के देखिए इंडिपेंडेंट को खोल के देखेंगे ना, जब आप किसी को इनडिपेंडेंट करके देखेंगे ना, वह मसले उठेंगे क्यों घर टूट रहे हैं। आज मुस्लिम डाइवोर्स रेशियो और नॉन मुस्लिम रेशियो बराबर क्यों हो गया? क्या मतलब वसत लोगों को यह दिखा रही है कि इस्लाम का सोशल सिस्टम खराब है? नहीं, इस्लाम वो है जो इस कुरान की आयतों में बंद है। सूरह बकरा में तलाक पढ़ चुके, यहाँ ये पढ़ चुके, आगे भी ये इशू चलते रहेंगे। मसला ये कि हमने इस किताब को बंद किया हुआ। आज आप कहें कि आई नीड अ मैरिज अकॉर्डिंग टू इस्लाम होगी, शुरू से लेके आप कहते अच्छा 16 17 18 साल की लड़के में शादी कर दे लड़के की, ये भी एक बड़ा बिग इशू हमारे लिए बन जाता है। तो फिर आप देखिए कि जब मुस्लिम माएं अपने बच्चों की तरबियत करती हैं तो वो 16 17 18 साल की उम्र वो कोई अल्लड़ बल्लड़ लड़के नहीं, बुद्धू होते कि जिनको टमाटर और सेब का फर्क ही नहीं पता। और वो ऐसी लड़कियां नहीं होती जो कहती आई डोंट नो, दालों के नाम तो मुझे आते ही नहीं है। संजीदा तरबियत होती है तो 16 17 साल की उम्र के लड़के वो सिंध को फतह कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 16 17 साल के थे, सिंध फतह करके आ गए। मुआविज़ और माज़ अफरा के बेटे अबू जहल का सर काट के आ रहे हैं। आज हमने बच्चों को एक छुनछुना बना के पाला। 12 साल की लड़की तो कहते बेबी टांगे भी नंगी बाजू भी नंगे, व्हाट आर यू डूइंग? ये बेबी बड़ी हो गई है, ये शादी के काबिल हो रही है, आप अभी इसको बेबी बना रहे हैं। और वो बाबा बाबा बुद्धू बैठे हुए डुल्ले और एक हाथ में चिप्स है एक में कोक है और अम्मा ये, और वो जरा सी बात पे पाँव मारते हैं, मेरा आईपैड नहीं मेरा आईपॉड नहीं, किधर चले? ये तो एक दुख की कहानी है, इसको ना छेड़े। लेकिन आज हमने अपने बच्चों का हक नहीं दिया इसलिए वो परेशान है। तो लिहाजा इस्लाम का एक अपना मिजाज है। इस्लाम किसी दूसरे के कपड़े नहीं पूरे आएंगे इसमें। इसके लिए जब हम इसको स्ट्रांग कर लेंगे पूरी दुनिया हमें देखेगी। मुस्लिम मुल्कों में कोई डाइवोर्स नहीं। चलिए मैं और आप आज यहाँ नियत करते हैं एक अच्छी सी, माशाल्लाह इस रमजान में हम आज नियत करते हैं। हमने इस्लाम के सेटअप को समझना है, पहचानना है। हम इस रमजान से अगले रमजान तक इस पूरे मुल्क में एक मुस्लिम डाइवोर्स फाइल ना हो, इज इट पॉसिबल? कोई मुस्लिम कंफ्यूजन ना, कोई क्राइसिस सेंटर वालों को औरतों को पैसे ना देने पड़े कि मियाँ ने निकाल दिया अब हम तो तुम्हें देंगे। देखिए इस्लाम को कैसे ये लोग स्टडी करेंगे। कोई क्राइम हो और उसमें पूरे इस साल के एंड पे लोग जब फिगर्स दें कि 2015 के एंड पे, वो कहते हैं स्ट्रेंज थिंग, पूरे साल में जितने क्राइम हुए उसमें कोई एक भी मुस्लिम नहीं था, जितने रूल्स ब्रेक हुए कोई मुस्लिम नहीं। करके दिखाइए, बी अ करेक्टर जो कि अनबीटेबल हो। तो जब आप और मैं इस तरह बन जाएंगे लोग खुद इस्लाम को बनाएंगे। आज मसला यह है कि इस्लाम कुछ और है और मुसलमान कुछ और है। और आज के लोग इस्लाम नहीं पढ़ रहे, वो मुसलमानों को चलता फिरता देके में गालियां दे रहे हैं। वल्लाही आज भी कुरान कम जलाए जा रहे हैं, आज भी मुसलमानों को ज्यादा टीस किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ये सारी बातें करके देखिए, बकरी आयतें मैंने जो कह दी इतनी लंबी बात, अल्लाह ने उसको चंद लम्हों में समेट दिया।